सभी समस्याओं को हल करना और उन पर अपना निर्णय देना समिति का कार्य था। पारस्कर गृह सूत्र में समिति के अध्यक्ष के लिए ईशान शब्द दिया गया है और समिति को पर्षद या परिषद कहा गया है। समिति के कार्य। समिति का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था। वेदों के अनुसार समिति के कुछ प्रमुख कार्य ये थे: एक, राजा को चुनना; दो, उसके कर्तव्यों का निर्धारण; तीन, जैसे कृषि की उन्नति, जन कल्याण, आर्थिक विकास और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना; तीन, कर्तव्य निर्वाह न करने पर राजा को पदच्युत करना और राज्य से निर्वासित भी करना; चार, प्रायश्चित आदि करने पर राजा को पुनः राजगद्दी पर बैठाना; पाँच, समिति राष्ट्रीय आय व्यय और जनता के योगक्षेम के लिए उत्तरदायी होती थी, अतः वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती थी; छः, राज्य में अन्याय, अत्याचार और अराजकता को रोकना; सात, समिति की अध्यक्षता राजा करता था, अतः समिति में राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी; दस, अर्थव्यवस्था और कर संग्रह कोष का महत्व। राज्य की समस्त व्यवस्था का आधार वित्त या अर्थ है। अर्थ ही राज्य शक्ति को स्थिरता प्रदान करता है। यजुर्वेद में श्री और लक्ष्मी को राजा की दो पत्नियां कहा गया है। जब तक श्री है तभी तक राजस्व है, राजत्व है। अतः वेद, मनुस्मृति, महाभारत, अर्थशास्त्र और शुक्र नीति आदि में कोष पर बहुत बल दिया गया है। राजा के लिए स्पष्ट निर्देश है कि जैसे भी हो कोष की वृद्धि करे, क्योंकि कोष पर ही सारा राजतंत्र निर्भर है। राजा के लिए यह भी निर्देश है कि वह कोष का उपयोग सेना, प्रजा संरक्षण और धार्मिक कार्यों में ही करे, अन्यत्र नहीं। कर के दो रूप। राजस्व की वृद्धि के लिए दो प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, एक बलि, दो शुल्क। इन दोनों के स्वरूप में अंतर है। एक बलि। ऋग्वेद में राजा को प्रजा से बलि, टैक्स लेने का अधिकार दिया गया है। अथर्ववेद में भी अनेक प्रकार के कर लेने का विधान है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि इस कर को उपयोगी कार्यों में ही लगावे। मंत्र में राजा के लिए उग्रह शब्द का प्रयोग है। इससे ज्ञात होता है कि उग्र और तेजस्वी राजा ही प्रजा से कर सरलता से वसूल कर सकता है, अन्य नहीं। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में कर आय का 16वां भाग अर्थात 6.25% ही लिया जाता था, परंतु मनु आदि के समय में यह बढ़कर आय का 6% अर्थात 16% हो गया। दो, शुल्क चुंगी। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि कर शुल्क चुंगी के रूप में भी वसूल किया जाता था। इससे कुछ विधाएं संकेत रूप में दी गई हैं। नावों से नदी पार करने पर, कृषि कार्य हेतु नाली आदि के द्वारा जल लेने पर, दूध और घी की बिक्री पर, ग्वालों आदि से। इसे ज्ञात होता है कि वस्तुओं की बिक्री, पशु आदि की बिक्री पर भी कुछ शुल्क लिया जाता होगा। अथर्ववेद में उल्लेख है कि जो ब्राह्मण पर किसी प्रकार का कर लगाते हैं वे पापी होते हैं। इसे ज्ञात होता है कि तटकर आदि के रूप में लिए जाने वाले शुल्क से ब्राह्मणों को मुक्त रखा जाता था। 11. विविध शस्त्रास्त्र। वेदों में दिव्य और मानवीय शस्त्रों एवं अस्त्रों का विस्तृत वर्णन है। शस्त्र और अस्त्र दोनों के लिए आयुध शब्द का प्रयोग होता था। जो यंत्र आदि के द्वारा फेंके जाते थे उन्हें उन्हें अस्त्र कहते थे, और जिन्हें हाथ में लेकर लड़ा जाता था उन्हें खड़ग, परशु आदि उन्हें शस्त्र कहते थे। इनके भी दो भेद थे, दिव्य और मानवीय। दिव्य अस्त्र आदि का प्रयोग असाधारण होता था, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेय अस्त्र आदि। वेदों में प्रक्षेपास्त्रों के लिए हेति और मेनी शब्द है। इनके निर्माण और प्रयोग के विषय में कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। क, दिव्य अस्त्र। वेदों में इन दिव्य अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। एक, आग्नेय अस्त्र या अग्निबाण, इसके प्रयोग से आग लग जाती थी। दो, वायव्य अस्त्र, इसके प्रयोग से आंधी जैसी तेज हवाएं चलती थी। तीन, पाशुपत अस्त्र, यह शिव का अस्त्र है। चार, ब्रह्मास्त्र, इसको ब्राह्मणों हेति कहा है, यह अमोघ अस्त्र था। पाँच, इंद्र अस्त्र या वज्र, यह इंद्र का प्रसिद्ध वज्र है। छः, वारुण अस्त्र, यह वरुण का नागपाश है, जो सांप की तरह मनुष्य को लिपट कर बांध लेते थे। सात, आथर्वर्ण अस्त्र, इसके प्रयोग से व्याघ्र आदि निश्चेष्ट हो जाते थे। सम्मोहन अस्त्र, इसके प्रयोग से शत्रु सेना बेहोश हो जाती थी। नौ, तामस अस्त्र, यह अश्रु गैस के तुल्य था, इसके प्रयोग से शत्रु सेना का दम घुटने लगता था। ख, मानवीय शस्त्र और अस्त्र, धनुष बाण। दो, श्रीक। तीन, हेति मेनी। चार, प्रहेति। पाँच, अशनी। छः, रिष्टि। सात, रंभिड़ी। आठ, सीस, सीसे की गोली। नौ, असी, तलवार। दस, परशु। ग्यारह, स्वधीति, छोटी तलवार। बारह, कृपाण। तेरह, वाशी, कुल्हाड़ा। चौदह, शूल, नोकिला शस्त्र। पंद्रह, चक्र। सोलह, धुमाक्षी, धुमास्त्र। सत्रह, उल्का। अठारह, कर्त। शुक्र नीति के शस्त्रास्त्रों का वर्णन करते हुए तोप के लिए बृहत नालिक और बंदूक के लिए लघु नालिक शब्द दिए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने शस्त्रास्त्रों की लंबी सूची दी है। इनमें मंत्रचालित अस्त्रों को दो भागों में बांटा है, स्थित यंत्र और चल यंत्र अर्थात मशीन। एक ही स्थान पर रहे या इधर उधर ले जाए जा सके। स्थित यंत्र 10 और चल यंत्र 16 प्रकार के गिने हैं। इनमें सर्वतोभद्र, पर्जन्यक, सतधनी, पांचालिक, त्रिशूल, चक्र, शक्ति, प्रास, कुंत, शूल, तोमर आदि का उल्लेख है।